ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। वर्तमान सत्ता गठबंधन 2084 तक चलेगा, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। कहा, सहकारी धोखाधड़ी में शामिल चाहे कोई भी हो उसे दंडित किया जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और उसमें सुधार के उपाय संबंध में नेपाली कांग्रेस ने किया विज्ञों से परामर्श। बाढ़ से क्षतिग्रस्त पेयजल परियोजनाओं की मरम्मत जल्द कर सहज रूप में पानी आपूर्ति करने का पेयजल मंत्री प्रदीप यादव का निर्देश। और भारत के छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 10 संदिग्ध माओवादियों के मारे जाने का किया दावा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि मौजूदा सरकार विकास, समृद्धि और सुशासन के संकल्प को पूरा करने की यात्रा में आगे बढ़ रही है। नेकपा एमाले की काठमांडू घाटी की 3 जिला कमेटियों द्वारा आज काठमांडू के दरबार मार्ग में आयोजित जागरण सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि वर्तमान गठबंधन स्थिरता और समृद्धि की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है और यह गठबंधन अगले चुनाव तक जारी रहेगा। इस बात का जिक्र करते हुए कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, तस्करी, भ्रष्टाचार, चरित्र हत्या और अश्लीलता स्वीकार्य नहीं है, प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा उनके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे और दो प्रमुख दल मिलकर देश की समृद्धि की यात्रा को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि सहकारी ठगी मामले में जो कोई भी शामिल होगा उसे दंडित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ओली ने व्यापार व्यवसाय संचालन करने और निवेश के क्षेत्रों की तलाश करने का उद्योगी व्यवसायियों से आग्रह किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भारत के स्थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने आज सिंह दरबार में भेंट की। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में हुई मुलाकात में उनके बीच द्विपक्षीय हित और नेपाल भारत के बीच के सैनिक संबंध के विषय में बातचीत हुई। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी। सरकार ने पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग में निजी क्षेत्र से और सदस्यों को शामिल किया है। कल हुई मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र से नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल और नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल को आयोग में शामिल किया गया है। सरकार ने फिलीपींस के मनीला में इसी मार्गशीर्ष 25 गते से 27 गते तक आयोजित होने वाले दीर्घकालीन यातायात संबंधी विमर्श कार्यक्रम में राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्राध्यापक डॉ शिवराज अधिकारी को सहभागी होने की स्वीकृति दी है। मंत्रिपरिषद की बैठक ने स्विट्जरलैंड सरकार से सुरक्षित आप्रवासन चौथे चरण के कार्यक्रम के लिए प्राप्त होने वाली करीब 1,76,97,00,000 रूपये के अनुदान को स्वीकार करने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय योजना आयोग में मुख्य सचिव स्तर के विशेष अधिकृत पद पर रहे डॉ बैकुंठ अरियाल द्वारा पेश किए गए स्वैच्छिक अवकाश पत्र को स्वीकृत करने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद ने किया। इसके अलावा भी कई अन्य निर्णय मंत्रिपरिषद ने किए। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
वाओ, रियल मै छिटो डाउनलोड त झन् फास्ट।
हे गाइस, के छ त्यस्तो फास्ट?
एनटीसीको 4G
प्रस्तुत छ नेपालस फास्टेस्ट 4G LTE एडवांस नेटवर्क का साथ।
यो त साच्चै नै फास्ट रहेछ।
पछिल्लो पुस्ताको NT4G LTE बिना रोकटोक 250 MBPS सम्मको डाउनलोड साथै HD मुभीज को भरपूर मजा। NT4G LTE सुचारू गर्नका लागि डायल गर्नुहोस् *444# नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस ने देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति और उसमें सुधार के उपायों पर अर्थतंत्र के जानकारों से सुझाव लिए हैं। कांग्रेस संसदीय दल ने आज विचार विमर्श कार्यक्रम आयोजित कर पूर्व अर्थमंत्री, पूर्व अर्थ राज्य मंत्री, राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंक के पूर्व गवर्नर, उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायत निजी क्षेत्र की संस्थाओं के प्रमुखों और प्रतिनिधियों से सुझाव लिये। कार्यक्रम में संकलित किए गए सुझावों को कांग्रेस संसदीय दल की आगामी बैठक में पारित कर इसके क्रियान्वयन के लिए नेपाल सरकार को सुझाव सहित अनुरोध किया जाएगा। ये जानकारी दल के प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरे ने दी। कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दल के नेता शेर बहादुर देवा के प्रमुख आतिथ्य में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ था। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के समक्ष नेपाल के लिए विभिन्न तीन देशों के राजदूतों ने अपने ओहदे का प्रमाण पत्र पेश किया। आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में इसराइल के आवासीय राजदूत स्मोलिक एरी बास, स्पेन के गैर आवासीय राजदूत जुआन एंटोनियो मार्च पुजोल और न्यूजीलैंड के गैर आवासीय राजदूत पैट्रिक जोन राटा ने अपने अपने ओहदे का प्रमाण पत्र पेश किया। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सभामुख देवराज घिमिरे के बीच भेंटवार्ता हुई। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आज हुई मुलाकात में सभामुख घिमिरे ने राष्ट्रपति पौडेल को अपने आसन्न कंबोडिया भ्रमण के विषय में जानकारी कराई। ये जानकारी राष्ट्रपति के सचिवालय ने दी। सभामुख घिमिरे कंबोडिया की राजधानी नोप मेन में इसी मार्गशीर्ष 8 गते से 11 गते तक होने वाले इंटरनेशनल पार्लियामेंट फॉर टॉलरेंस एंड पीस IPTP के 11वें प्लेनरी सेशन में भाग लेने के लिए कंबोडिया जाने वाले हैं। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि विभाजित माओवादी पार्टियां एकता की प्रक्रिया में हैं। आज चितवन के कोरिनटार में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भेंटघाट एवं विचार विमर्श कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि माओवादियों के विभाजन की श्रृंखला रुक चुकी है और एकता की प्रक्रिया शुरू हुई है। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा कि कृषि विकास बैंक को किसानों को केंद्र में रखकर काम करने की जरूरत है। आज काठमांडू स्थित कृषि विकास बैंक के केंद्रीय कार्यालय में नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री सिंह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कृषि विकास बैंक के ऊपर किसानों के घर दरवाजे तक पहुंचकर सेवा मुहैया कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए अन्य बैंक की तुलना में इसका दायित्व अधिक है। पेयजल मंत्री प्रदीप यादव ने पेयजल परियोजनाओं के विभिन्न क्षतिग्रस्त स्थानों पर मरम्मत जल्द संपन्न करने का निर्देश दिया है। मंत्री यादव ने बीते आश्विन 11 गते से लगातार हुई बारिश के कारण आई बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण जिन स्थानों पर जलापूर्ति व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित और क्षतिग्रस्त हुई है वहां मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के माध्यम से चाहे अस्थायी ही क्यों न हो लोगों को नियमित पानी उपलब्ध कराने का निर्देश किया। इसी तरह मंत्री यादव ने कहा कि बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति संसाधनों के पुनर्निर्माण लगायत कामों के लिए आवश्यक बजट की व्यवस्था करने की वे पहल कर रहे हैं। पेयजल मंत्रालय के मुताबिक बाढ़ व भूस्खलन से देश भर में 1600 से अधिक परियोजनाओं में क्षति पहुंची है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 10 संदिग्ध माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ अभी भी जारी है। पुलिस ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया है और घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद करने की बात कही है। पुलिस के अनुसार अभी तक सर्च ऑपरेशन में 10 संदिग्ध माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके अलावा मौके से इंसास राइफल AK-47 SLR सहित कई हथियार मिले हैं। तलाशी अभियान अभी जारी है। छत्तीसगढ़ में इस साल जनवरी से अब तक पुलिस ने मुठभेड़ की अलग अलग घटनाओं में 200 से भी अधिक संदिग्ध माओवादियों को मारने का दावा किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्तमान सत्ता गठबंधन 2084 तक चलेगा, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। कहा, सहकारी धोखाधड़ी में शामिल चाहे कोई भी हो उसे दंडित किया जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और उसमें सुधार के उपाय संबंध में नेपाली कांग्रेस ने किया विज्ञों से परामर्श। बाढ़ से क्षतिग्रस्त पेयजल परियोजनाओं की मरम्मत जल्द कर सहज रूप में पानी आपूर्ति करने का पेयजल मंत्री प्रदीप यादव का निर्देश। और भारत के छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 10 संदिग्ध माओवादियों के मारे जाने का किया दावा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।